वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में सर्वेक्षण दस्तावेज तैयार किया है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स में कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार आज दोपहर संवाददाताओं को संबोधित करेंगे। भारत ने विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था का दर्जा बनाए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल पेश किए जाने वाला बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। संसद के बजट सत्र से पहले संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने फैसला दे दिया है और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर अगले 5 वर्ष के लिए देश के लिए खड़ा होना चाहिए।
मैं आज आदरपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है, देश को प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा हमें आगे बढ़ाना होगा।
श्री मोदी ने कथित रूप से नकारात्मक राजनीति करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी विफलताओं से को छिपाने के लिए संसद के समय का इस्तेमाल किया। पिछले सत्र में संसद सत्र को बाधित करने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल ने संसद में सत्ता पक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता को दी गई गारंटी को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि बजट सत्र देश की लोकतंत्र यात्रा का महत्वपूर्ण गंतव्य बनेगा। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठने और अगले 4.5 वर्ष के लिए अपने आप को देश के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक का देश भर में केवल एक मामला पटना में सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन किया कि देश में पेपर लीक की घटनाएं बार बार सामने आई हैं। श्री प्रधान ने सदन को बताया कि नीट यूजी परीक्षा के लिए बनाए गए 4,700 परीक्षा केन्द्रों में से केवल एक स्थान पर विसंगतियां और भ्रष्टाचार के मामलों का पता चला। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि देश की परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि देश में लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरएसपी के श्री एनके प्रेमचंद्रन सहित कुछ अन्य विपक्षी सांसदों ने भी आज सदन में पेपर लीक का मामला उठाया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस, वामपंथी दलों, टीएमसी और अन्य दलों के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस खारिज कर दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र को जमानत दे दी है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने आशीष मिश्र की आवाजाही को सिर्फ दिल्ली या लखनऊ तक ही सीमित रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने और उसका शेड्यूल भी तय करने का निर्देश दिया है। वर्ष 2025 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर प्राप्त की जाएंगी। श्रीलंका में खेले जा रहे एशिया कप 2020 महिला क्रिकेट में आज ग्रुप बी में श्रीलंका का मुकाबला मलेशिया से होना है। मैच दिन के 2 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी में आज ही शाम 7 बजे बांग्लादेश का मुकाबला थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।